नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय दान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त तो नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थलसेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। यह अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अमरीका ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अब अमरीका का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं एक अन्य मैच में कल इंग्लैंड ने कांगो को 2-1 से हरा दिया। अब 6 जुलाई को राउंड ऑफ 16 में इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। पुरुष क्रिकेट में भारत इंग्लैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्लीवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार, जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज, चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने एक खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर, दर्शनार्थियों की दौड़ में केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ, छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया। 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।